सूरदास की राधिका। सूरदास ने राधिका के जिस रूप का चित्रण किया है उसकी तुलना शायद ही किसी अन्य भक्त के चित्रण से की जा सके। चीर साहचर्य और बाल सखी की भूमिका के ऊपर प्रतिष्ठित यह राधिका अपना उपमान स्वयं ही है। इस प्रेम का कोई पत्तर नहीं है। बाल लीला के समय ही एक दिन श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में खेलने निकल पड़े। उस दिन उन्होंने नील वस्त्र समावृता राधिका को देखा। वे यमुना के तीर पर छोटी छोटी बालिकाओं के साथ खेलने आई थीं। सूरदास के श्याम उन्हें देखते ही रीझ गए, नैन से नैन मिले और ठगोरी पड़ गई, नैन नैन मिली परी ठगोरी। संस्कृत के कवि ने एक प्रकार की ठगोरी का वर्णन किया है जिसमें श्याम सुंदर को देखते ही राधिका कुछ ऐसी ठगी गई थी कि खाली बर्तन में ही दही मथने लगी थी और उधर श्याम सुंदर ऐसे भूले कि गाय के भ्रम में बैल को दूहने बैठ गए थे। यह ठगोरी और तरह की थी, इसमें कहीं झिझक या संकोच का लेश भी नहीं था। सो श्याम ने देखा और परिचय पूछा, क्यों जी तुम कौन हो, किसके लड़की हो, तुम्हें तो ब्रज की गलियों में कभी खेलते नहीं देखा। राधिका ने उत्तर में कहा, क्यों हम आवे ब्रज की गलियों में, हम तो अपनी ही पौर पर खेलती रहती हैं। सुना है नंद का ढोटा बड़ा चोर है, किसी की दही चुरा लेता है तो किसी का मक्खन ले भागता है। श्याम ने हंसते हुए कहा, भला मैं तुम्हारा क्या चुरा लूंगा जो तुम खेलने नहीं आती, तुम तो दही बेचने नहीं जाती है हो ना, चलो न खेलने चलें, हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी। सूरदास के श्याम रसिक शिरोमणि है, भोली राधिका बातों में भूल गई, विचारी की बात पता ही नहीं चल सका कि दही से भी बड़ी चीज उनका हृदय इस अजीब चोर ने बातों ही बातों में हर लिया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख ही नहीं कहूँ ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तनी आवती, खेलत रहती आपनी पौरी, सुनत रहती सब नंद नंद ठोटा, करत रहत माखन दधी चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन संग चलो मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भूलई राधिका गोरी। यह प्रथम दर्शन था पर प्रेम का उलझन यही शुरू हो गया। राधिका मन ही मन उलझ गई, उन्हें अब घर अच्छा नहीं लगता, चित्त नए खेल की साथी के लिए व्याकुल हो गया। माता से बराबर दोहनी मांगती रहती, उद्देश्य है कि खरिक में नए साथी से मिलना। अब उन्हें भगवान के बिना नहीं अच्छा लगता, एक साथ छाया की भांति लगी रहती हैं। गुरुजन इस नयन मनहारी जोड़ी को देखकर उल्लसित होते हैं। कभी वृषभानु का और कभी नंद का घर उस युगल मुति के पवित्र हास्य से उद्भासित होता रहता है। खरिक में भी राधा कृष्ण, यमुना तट पर भी राधा कृष्ण, ब्रज की गलियों में भी राधा कृष्ण, जहाँ देखो वहीं राधा कृष्ण। यशोदा ने राधिका को देखा और आनंद से गदगद होकर पूछ बैठी, नाम कहाँ है तेरो प्यारी, बेटी कौन महर की है तू, कहीं सु कौन तेरी महतारी, धन्य कोख जही तो को राखियो, धन्य धरी जिह तू अवतारी, धन्य पितु मातु धन्य तेरी छवि, निरखतियो हरि को महतारी। राधिका का परिचय पाकर यशोदा माता ने उन्हें अच्छी तरह संवार दिया, बोली जा अब श्याम के संग खेल। इस प्रकार बाल काल से ही राधिका और कृष्ण का प्रेम सहज स्वाभाविक रूप में विकसित होता है। तथापि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक विषम उत्सुकता रात दिन बनी रहती है। राधिका शुरू से ही तदचित्त होकर भगवान से प्रेम करती हैं। वे मन ही मन अपने अंतर्यामी श्याम से कहती हैं, तुम साक्षी हो, मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं जानती, माँ बाप तो कुल मर्यादा को ही ध्यान में रखते हैं, वे तुम्हें क्या जाने। राधा विनय करती मन ही मन, सुनहु श्याम अंतर के यामी, माँ तो पिता कुल कान ही मानत, तुम ही न जानत है जग स्वामी। यह विलास कलावती की प्रार्थना नहीं है, यह भक्ति की कामना है जो अपने आराध्य के अतिरिक्त और किसी को नहीं मानना चाहता। एक अनंत एकांत प्रेम है। यह प्रेम आकस्मिक नहीं है। दीर्घ काल के साहचर्य से उत्पन्न यह प्रेम अपना उपमान आप ही है। भवभूति ने राम और सीता के प्रेम में दीर्घ साहचर्य जनित इस गाढ़ता का दर्शन पाया था। सूरदास ने राधिका के प्रति प्रेम में उसी प्रेम का पराकाष्ठा देखी थी। मन मधुकर पद कमल लुभान्यो, चित्त चकोर चंद्र नख अटक्यो, इकटक पल न भुलान्यो, श्याम सखी नीके देख नाही, चितवत ही लोचन भरी आए, बार बार पचिताही, कैसे हूँ करी इकटक राखती, न कहीं मैं अकुलाही, निमिष मनो छवि पर रखवारे, ताते आती ही डराही। प्रेम वैचित्र राधिका के मुख से ही इस प्रेम का इतिहास श्रवणीय है, और कौन उस अजीब दुख को समझ सकता है। जब से भगवान के साथ उसका परिचय हुआ है, तभी से वे चेरी की भांति साथ साथ रहती हैं, पर प्रेम की प्यास कहाँ मिटी। सुनरी सखी दशा यह मेरी, जब ते मिले श्याम घन सुंदर, संग ही फिरत भई जन चेरी, नीके दरस देत नहीं मोह को, अंगन प्रति अनंग की टेरी, चपला ते अति ही चंचलता, दसन दमक चक चौंध घनेरी, चमकत अंग पीत पट चमकत, चमकती माला मोती निकेरी, सुर सुमझी विधना की करनी, अति रस करती सौह मुह तेरी। सर, यह प्रेम वैचित्र का चरम निदर्शन है। प्रिया के अति निकट रहने पर भी प्रेमोत्कर्ष के कारण प्रेमी को वियोग कथा की जो अनुभूति होती है, उसे प्रेम वैचित्र कहते हैं। प्रेम का उत्कर्ष ही इसका कारण है। रूप गोस्वामी पाद ने इसके उदाहरण में बताया है, श्री कृष्ण चंद्र के सामने होते हुए भी तीव्र अनुराग वश वियोग व्यथा की आशंका से राधिका हतबुद्धि हो गई थी। उन्हें चक्कर आ गया था, दांतों में तिनका दबाते हुए बोली, हे सखी मेरे प्रिय को दिखाओ। उन्होंने कुछ ऐसी चेष्टा की कि स्वयं श्री कृष्ण भी विस्मित हो गए। अभिरेन्द्र सुते स्फुरत्यपि पुरस्तीव्रानुरागोत्यथया, विश्लेष ज्वर संपदा विवश धीर अत्यंत मुद्धूर्णिता, कांतम मे सखी दर्शयेति दशनय रुद्धर्ण शुष्पांकुरा, राधा हंत यथा व्यचेष्टत यथा कृष्णो अप्य बुद्धि स्मिता। परंतु मेरा विश्वास है कि गोस्वामी पाद को सूरदास के पदों से परिचय होता है। सूरदास के कुछ पूर्ववर्ती तो ये सूरदास से कोई पद उद्धृत करते हैं, शायद वे इस पद को उद्धृत करते। राधे मिले हूँ प्रतीति न आवती, यदसी नाथ यदपि नाथ विधु वदन विलोकति, दर्शन को सुख पावती, भरी भरी लोचन रूप परम निधि, उर्मे आनि दुरावती, विरह विकल मति दृष्टि दुहु दसि सचि सरधा ज्यो धावती, चितवत चकित रहत चित अंतर, नैन निमेश न लावती, सपनो आहि कि सत्य ईश बुद्धि वितर्क बनावहि, कबहु कुकरति विचारी कौन हो को हरि के ही यह भावती, सूर प्रेम की बात अटपटी मन तरंग उपजावती। या फिर इस पद को उद्धृत करते, यद्यपि राधिका हरि संग हाव भाव कटाक्ष लोचन करता नाना रंग, हृदय व्याकुल धीर नाही वदन कमल विलास, त्रिसा में जल जाल सुने ज्यों अधिक अधिक ही प्यास, श्याम रूप अपार इत उत लोभ पटु विस्तार, सूर मिलत न लहत को दूनि बल अधिकार। या फिर और कोई पद उद्धृत कर लेते, सूरद सागर में उन्हें उत्तम से उत्तम उदाहरण मिल जाते हैं। यह वैचित्र्य अत्यंत सहज और अत्यंत सुकुमार है। सचमुच ही ब्रज राज कुंवर और राजधानी का यह अपूर्व प्रेम लोकोत्तर ही है। जब युगल मुत्ती का मिलन होता है, सारी वनस्थली चकित सी होकर निर्मिमेश भाव से शोभा के इस अपार समुद्र को देखा करती है और इस मिलन संगीत को गाते गाते सूरदास जैसे रुकना ही नहीं जानते। राधा का प्रेम भाव। प्रेम के इस स्वच्छ और मर्जित रूप का चित्रण भारतीय साहित्य में किसी और कवि ने नहीं किया। यह सूरदास की अपनी विशेषता है। वियोग के समय राधिका का जो चित्र सूरदास ने चित्रित किया है, वह भी इस प्रेम के योग्य है। वियोग के समय राधिका के मिलन, समय की मुखरा लीलावती चंचला और हसोड़ राधिका का वियोग के समय मौन शांत और गंभीर हो जाती हैं। उद्धव से अन्यान्य गोपियां काफी बकझक करती हैं, पर राधिका वहां जाती भी नहीं। उद्धव ने श्री कृष्ण से उनकी जिस मूर्ति का वर्णन किया है, उससे पत्थर भी पिघल सकता। उन्होंने राधिका की आंखों को निरंतर बहते देखा था, कपोल देशवारी धारा के आर्द था, मुखमंडल पीत हो गया था, आंखें धस गई थी, शरीर कंकाल शेष रह गया था। वे दरवाजे से आगे न बढ़ सकी थी। प्रिय वयस्य ने जब संदेश मांगा तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रेम का वही रूप जिसने संयोग से कभी विरह शंका का अनुमान नहीं किया, वियोग में इस मूर्ति का को धारण कर सकता है। वास्तव में सूरदास की राधिका शुरू से ही आखिर तक सरल बालिका है। उनके प्रेम में चंडीदास की राधिका की तरह पट पर सांस ननद का डर भी नहीं है और विद्यापति की किशोरी राधिका के समान रुदन में हास और हास में रुदन की चातुरी भी नहीं है। इस प्रेम में किसी प्रकार की जटिलता भी नहीं है। घर वन में, घर में, घाट पर, कदम तले, हिंडोरे पर, जहाँ कहीं भी इसका प्रकाश हुआ है, वही अपने आप में ही पूर्ण है। मानो वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता और न कोई उसकी खबर रखता है। राधिका के इस रूप का परिचय पाने के लिए हमें कुछ और भी पदों को देखना होगा। मैंने अपनी पुस्तक सूर साहित्य में इस बात का कुछ विस्तृत चर्चा की है, यथासंभव संक्षेप में कह रहा हूँ। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं, तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के इस प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है। पद पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जानबूझकर अलंकारों का उपयोग कर रहा है। पन्ने पर पन्ने पढ़ते जाइए, केवल उपमाओं और रूपकों की घटा, अन्योक्तियों का ठाट, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार, यहाँ तक कि एक ही चीज दो दो चार चार दस दस बार तक दोहराई जा रही है, फिर भी स्वाभाविक और सहज प्रभाव कहीं भी आहत नहीं हुआ। जिसने सूर सागर नहीं पढ़ा, उसे यह बात सुनकर कुछ अजीब सी लगेगी, शायद वह विश्वास ही न कर सके, पर बात सही है। काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल गया है। राधा और कृष्ण के इस मिलन सुख के भीतर अचानक दुख का दर्शन हुआ। कंस के दूत अक्रूर एकाएक किसी भयानक धूमकेतु की भांति उदित हुए, बिना पूर्णिमा के ही चंद्रमा पर ग्रहण लग गया। बिनु पर वही उपराग आज हरि तुम है चलन कहयो, जिसने जहां सुना वह वही व्याकुल हो रहा है। ब्रज की युवतियों को तो मत पूछिए, वे चित्र लिखित सी हो रही हैं, जो जहां थी वह वही उसकी पलकों में टक लग गई। इंद्रिय व्यापार रुद्ध हो रहे हैं, सभी स्तब्ध सभी अचेतन। सूरदास ने राधिका की दशा की ओर इशारा भर कर दिया। वे जानते थे कि ब्रज लाड़ीली के चित्त पर इस आकस्मिक उल्कापात का जो फल हुआ था वह वर्णन के अतीत है। सूर सागर में इस प्रसंग में जितने पद आए हैं वे विवश व्याकुलता के निदर्शक हैं। भगवान जा रहे हैं, उन्हें रोक सकना असंभव है, और फिर भी उनके बिना जीवन का भार हो जाना निश्चित ही है। विवश राधिका भीतर ही भीतर कटके रह जाती हैं। उनका हृदय इतना गंभीर है कि वे अपना विरह पी कर रह जाती हैं। उसे भगवान के निकट नहीं होने देती। भगवान सबको रुलाते कल्पाते जब चलने को तैयार हो ही जाते हैं, तब राधिका कर्म को दोष देकर भीतर ही भीतर महसूस कर रह जाती हैं। चलत हरि धृग जू रहे ए प्राण, कहां वह सुख अब सुहत सहा हो दुसह दुख डर करी कुलिस समान। कहां वह कंठ श्याम सुंदर भुज करति अधर रसपान, अचवत नयन चकोर सुधा विधु देखो मुख छवि आन। जाको जग उपहास कियो तब छाड़ियो सब अभिमान, सूर सुनिधि हम ते हैं बिछुरत कठिन है कर्म निदान। श्याम का रस चल पड़ता है, सखीरी वह देखो रस जात। हाय हाय राधिका की उन विवश आंखों की कल्पना भी कितनी हृदय वेधक है। उनकी आंखें पीछे ही लौट आना चाहती है, प्राणेश्वर के रथ के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती। उनका मन तो उस माधुरी मूर्ति के साथ चला गया, शरीर ब्रज में लौट कर क्या करेगा भला। कहीं राधिका हवा हो सकती है और रथ की पताका को आसमान में उड़ा सकती। काश वे धूल हो जाती और चरणों में लिपट जाती, पर हाय यह कहाँ हो सका। वह रूप और माधुरी की पुतलिका ब्रजमाला मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पाछे ही चितवत मेरु लोचन आगे परत न पाई, मन ले चली माधुरी मूरत कहाँ करो ब्रज जाई। पवन न भई पताका अंबर रथ के भई न अंग, धूरी न भई चरण लिपटती जाती तह लो संग। ठाड़ी कहाँ करो मेरी सजनी जेही विधि मिले ही गोपाल, सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी मुसकी परी ब्रजलाल। अब पछतावा हो रहा है, जब मोहन चलने लगे तो फेट क्यों नहीं पकड़ ली। राधिका तो लाज से गड़ी जाती थी, पर क्या यशोदा माता को इतना भी नहीं करना था। उनके बिना राधिका का यह वियोग विधुरा शरीर तो कौड़ी के मोल भी न रहा। लाजवश उस समय जो निष्क्रियता आ गई थी वह आज हृदय को भेद डालती है। तब न बिचारी यह बात, चलत न फेट गई मोहन अब ठाड़ी पछितात। निरख निरख मुख रही मौन है थकित भई पलपात, जब रथ भयो अदृष्ट अगोचर लोचन अति अकुलात। सबे अजान भई वही अवसर धीगहि जसुमति मात, सूरदास स्वामी के बिछुरे कौड़ी भरी नबिकार। तथा अब वह बातें इहा रही, मोहन मुख मुस्काई चलत कछु काहू न काही कही। सखे सुलाज बस सुमझी परस्पर मन सन्मुख सबै सही, अब वे सालती हैं उर महिया कैसा कढ़ती नहीं। प्रथम विचोह की यह व्याकुलता अपार है। रात तारे गिनते गिनते कट जाती हैं, पापी हृदय वज्र से भी कठोर होकर उस दारुण विरह की मार को सहा करता है। मृत्यु और जीवन की रसा कसी का वह दृश्य बड़ा ही मर्म वेधक है। श्याम को भूलना भी कठिन है, चंडीदास ने ठीक ही कहा है, श्याम की प्रीति की यह स्मृति भी दारुण है और भूलने से भी प्राण फटने लगता है। वह शंख वड़ी के उस करात की भांति है जो आते भी कटता है जाते भी काटता है। श्याम मेर पीरित स्मृति विषम फुलिते भूलिते परान फाटे, शंख वड़ी केर करात ये मिनी आसिते जायते काटे। बहुत दिन हो गए बिनु गोपाल बैरेनी भई कुंजे, भगवान ने एक पाती भी नहीं लिखी। राधा ने बड़े प्रयत्न से प्रियतम की मूर्ति बनाई, सजल मेघ के समान शरीर पर विद्युत की भांति पीताम्बर सजा दिया। स्कंद देश को उन्नत, कटी को छीड़, भुजाओं को विशद, कपोल नासिका नेत्र के सभी को यथोचित चित्रित किया। चित्र इतना सुंदर उतरा कि जान पड़ा अब बोला तब बोला, पर हाय इसी भ्रम ने सब कुछ माटी कर दिया, सारी तन्मयता भंग कर दी। उस कमनीय मुख के मृदु वचन सुनने के लिए वे आतुर भाव से व्याकुल हो उठी। मैं सब लिखी शोभा जु बनाई, सजल जलद तन वसन कनक, रुचि उर बहु दाम सुनाई। उन्नत कंध कटी खीन, विषम भुज अंग अंग सुखदाई, सुभग कपोल नासिका नैन, छवि अलक लिहित धृत पाई। जानती हो यह हलोल लेख, करी ऐसे ही दिन विरमाई, सूर दास मृदु वचन श्रवण लगी अति आतुर अकुलाई। जयदेव कवि की राधिका ने चित्र नहीं बनाया था, केवल ध्यान योग से एक मूर्ति कल्पित की थी। तन्मयता के आवेश में इस ध्यान मूर्ति को वास्तविक समझकर हंसती, रोती, विलापती, कलपती और आनंदित होती रहती थी और पग पग पर कहती रहती थी और पग पग पर कह उठती हैं, हे माधव, मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ी हूँ। तुम्हारे विमुख होने पर अमृत का निधि या चंद्रमा भी मेरे शरीर में दाह उत्पन्न करता है। ध्यान लयन पुरह परिकल्प्य भवंत मतीव दुरापम, विलपति हसति विसिदति रोदति चंजति मुंजित तापम। प्रतिपद मिदमपि निकदति माधव तव चरणे पतिताहम, त्वयि विमुखे मयि सपदि सुधा निधि अपि सुतनुते तनुदाहम। दोनों कल्पनाओं का मौलिक अंतर लक्ष्य करने योग्य है। सूरदास की राधिका स्वयं नहीं बोलती, चित्र के मुख से ही कुछ सुनने को उत्सुक और कल्पित है। सूरदास की राधिका का वियोग उनके तरल नहीं बना देता। हम आगे चलकर देखेंगे कि वे और भी गंभीर हो जाती हैं, यहाँ तक कि भगवान के आने पर दौड़कर मिलने नहीं चल देती। भगवान ने जब छोड़ दिया तो उन्हें इसी में प्रसन्नता होगी, नहीं तो त्याग ही क्यों करते। राधा अपने सुख के लिए ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकती जो उनकी प्रसन्नता का परिपंथी हो। राजा दुष्यंत ने शकुंतला का वह चित्र बनाया था जिसमें उसने दोनों नेत्र कानों तक फैले हुए थे, भ्रूलताएं लीला द्वारा कुंजित थीं, अधर देश उज्जवल दशन अक्षवि से उद्भासित थे, ओष्ठ प्रदेश पके हुए करकंद फूल के समान पाटल वर्ण के थे, विभ्रम विलास की मनोहारिणी छवि एक तरल धारा से जगमगा उठी थी। चित्रगत होने पर भी मुख में ऐसी सजीवता थी कि जान पड़ता था अब बोला तब बोला। दीर्घा पांग विसारती नेत्र युगल लोलांचित भ्रूलतम, दंतांतम परिकीर्ण हास किरण ज्योत्सना विलिसाधारम, करकंध्युद्युति पाटलोष्ठ रुचिरम तस्यां देतन मुखम, चित्रे अप्यालापति विभ्रम लसत प्रोपति भन्न क्रांति द्रवम। कवि कालिदास ने लौकिक प्रेम के भीतर स्वर्गीय गंभीर भर दिया है। उधर कालिदास के यक्ष ने जब अपनी प्रिया का चित्र बनाया था तो उसे प्रणय कुपित अवस्था ही याद आई थी। वह चित्र के पैरों पड़े जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्रूर विधाता से उस हालत में भी उन प्रेमियों का मिलन नहीं सहा गया, पर राधिका ने जो चित्र बनाया था वह सहज भाव का सहज चित्र था। यक्ष प्रिया के चित्र को चित्र ही समझता रहा, पर राधा ने वैसा नहीं समझा। वे उसे यह साक्षात प्रिय समझकर उसके मृदु वाणी सुनने के लिए अधीर हो गईं। एक पथिक मथुरा जा रहा था, राधिका ने उसे बुलाया, पर जब संदेश कहने लगी तो गदगद कंठ हियो भरी आयो वचन गहयो न गयो, गदगद कंठ हियो भरी आयो वचन कहयो न गयो। कुछ धीरज धारण करके राधिका ने उस पथिक से जो कुछ संदेश भिजवाया वह सूर सागर की राधिका के हृदय का सर्वोत्तम निदर्शन था। नाथ अनाथन की सुधी लीजै, गोपी गाय ग्वाल गोसुत सब दीन मलीन दिन ही दिन छीजै, नैन सजल धारा बाढ़ी अति बूढ़त ब्रज दि किन कर गही लीजै, इतनी विनती सुनहु हमारी बारी कहूं पतिया लिखी दीजै, चरण कमल दर्शन नव नौ कगा करुणा सिंधु जगत जस लीजे, सूरदास प्रभु आस मिलन की एक बार आवन ब्रज कीजे। राधिका की एक ही प्रार्थना है, बारक जाइबो मिली माधव, को जाने तन झूठी जाइगो, सूलय रहे जी साधव, पहुनेहु नंद बाबा के आवहु, देख लेउ पल आधव, मिलही में विपरीत करे विधि होत दस को बाधव, जो सुख शिव सनकादिक न पावत, सो सुख गोपी ने लाधव, सूरदास राधा विलपति है हरि को रूप अगाधव। उद्धव आए गोपियों से उनकी जो बातचीत हुई उसमें युग युगांतर का सनातन विरह फूट पड़ा। गोपियों ने प्रेमातिशय के कारण क्या क्या नहीं कहा। वे उद्धव के पास गई ही नहीं, चलती बार उद्धव राधिका के घर स्वयं गए और प्रियतम के लिए संदेश का प्रार्थना की। हाय राधिका, कौन सा संदेश दे, जिस गोपाल के साथ गुड़ियों के खेल खेले हैं, ठठोली से पनघट पर मुखरित हुए हैं, वे ही आज मथुरा के सम्राट हैं, वे संदेश चाहते हैं। उन्होंने दूत भेजा है, जो इतने समीप थे वे आज इतने दूर हो गए हैं। राधिका ने उद्धव को देखा और उनके दोनों विशाल नयन उमग चले। वे आगे बढ़कर उद्धव का स्वागत करना चाहती थी, पर चरण उलझ गए, ठहरा कर गिर पड़ी। चलत चरण गही रह गई, गिर सोएद सलिल रस भीनी, छूटी बट भुज फूटी, भले आ टूटी लर फट कंचुक झीनी। और कंठ वचन न बोली, आवे हृदय परस हस भीन, नैन जली भरी रोई दीने, ग्रसित आपद दीन। जिन नैनों की कृपा कोर के लिए किसी दिन नटनागर के नयन प्यासे रहते थे, प्रथम दर्शन में ही जिन नैनों ने गोपाल लाल के नैनों में ठगोरी डाल दी, उन्हीं नैनों से उद्धव को कैसा देखा। हाय, सूर सागर में प्रतिफलित उस अपार हीरा समुद्र को कौन समझ सकता है। उद्धव ने क्या देखा, नैनन होड़ बदी बर खासो, रात दिवस बरसत झर लाए, दीन दून कर खासो, चारी मास बरसे जल खूंटे, हार समझ उन्मानी, एते हूँ पर धार न खंडित, इनकी अकथ कहानी। और देखी मैं लोचन चुवत अचेत, मनहु कमल शशि त्रास, ईश को मुक्ता गनि गनि देत, द्वार खड़ी एकतर पर जोवती, उर्धव श्वास न लेत, इत्यादि। राधिका की दशा उद्धव ने बड़ी ही करुड़ भाषा में बताई। रहती रैन दिन हरि 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 रट, चितवत इकटक मग चकोर लौर, जुबते तुम बिछरे नागर नट, भरी भरी नैन नीर ढारती है, सजल करती अति कंचुकी के पट, मनहु विरह को ज्वरता लगी लियो, नेम प्रेम शिव शीश सहस घट, जैसे यव के अंग ओस कन पान रहत, ऐसे अवधि के तट, सूरदास प्रभु मिलो कृपा करी, जे दिन कहूँ तेव आए निकट। भक्तों में प्रसिद्ध है सूरदास उद्धव के अवतार थे। यह उनके भक्त और कार्य जीवन के सर्वोत्तम आलोचना है। बृहद भगवतामृत के अनुसार उद्धव भगवान के महाशिष्य, महाभृत्य, महामाते और महाप्रियतर थे। वे सदा श्री कृष्ण के साथ रहते थे, शयन के समय, भोजन के समय, राजकाज के समय कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि अंतपुर में भी सदा साथ रहते थे। केवल एक बार उन्होंने भगवान को छोड़ा था, और वह उस समय जब गोपियों का समाचार लेने के लिए भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा था। कहते हैं इस बार उन्हें भगवत संग से दूना आनंद मिला। उनके तीन काम थे, भगवान की पद सेवा, उनके साथ हास विनोद और क्रीड़ा के समय साथ साथ रहना। पहले कार्य में इतने तन्मय रहते थे कि अबोध लोगों को भ्रम हो जाता था कि वे पागल हो गए हैं। सूरदास के जीवन का भी यही परिचय है। केवल एक बार उन्होंने सूर सागर में भगवान का साथ छोड़ा, भ्रमर गीत में निश्चय ही उन्हें भी दूना आनंद मिला। इस प्रवाद का साहित्यिक अर्थ बड़ा ही अर्थपूर्ण है। उद्धव के मुख से सूर सागर में जो कुछ कहवाया गया है वह कल्पना विलास नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूत सत्य है। मैं आपको यहाँ फिर एक बार याद दिला रहा हूँ कि विरह के प्रसंग में साधक भक्त अपने आप को ही खोल कर रख देता है, परंतु राधिका का चित्र अब भी अधूरा है। मैं अपने पाठकों को प्रभास क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आनंदकंद भगवान गोपियों और गोपालों के कृतार्थ करने वाले हैं। आज राधिका के भाग्य सिरे हैं। अंचल उड़त मन होत गह गहो परकत नैन खये। राधिका ने यह शुभ संवाद सुना, उनकी आंखों में पानी भर आया। श्याम सुंदर तो आ गए, पर उनके दर्शन क्या भाग में बदे हैं? कौन जाने इन्होंने इच्छा पूर्वक राधिका का त्याग दिया हो। खुशी होगी तो फिर ग्रहण करेंगे, पर राधिका दौड़कर उनके प्रेम को अपमानित नहीं करेंगी। पर हाय, मन तो नहीं मानता। राधा नैन नीर भरी आए, कब धौ मिले श्याम सुंदर सखी यद्यपि निकट है आए। राधा नैन नीर भरी आए, कब धौ मिले श्याम सुंदर सखी यद्यपि निकट है आए। भगवान लाव लश्कर के साथ आए हैं। दास दासियों की इतनी घटा, वस्त्रा भूषणों की ऐसी छटा, ब्रजवासियों के निकट अत्यंत अपरिचित है। गुड़ियों के खेलने वाले कृष्ण ये नहीं हैं, ये महाराज हैं। उनकी अभ्यर्थना करने के लिए ब्रज की गोपियां खड़ी हो गईं। राधा भी अपनी मर्म व्यथा के भार से दुखी हुई एक तरफ खड़ी हो गईं। महाराजा धीराज श्री कृष्ण अपनी पट्ट महिषी के साथ धूमधाम से निकले और गोपियों के सामने आए। महारानी रुक्मिणी ने से न रहा गया और पूछ बैठी, प्रिया इनमें को वृषभान किशोरी, जिस राधिका का नाम लिए बिना भगवान कोई काम ही नहीं करते। जाके गुन गनी गुथित माल कबहू उर्मे नहीं छोरी। उस वृषभान लली को देखने की उत्सुकता रुक्मिणी संभाल न सकी, बोली, नेक हमें दिख रावहू अपने बालापन की जोरी। भगवान ने रुक्मिणी को दिखाया, वह देखो जुवतिन में थाड़ी नील वसन तन गोरी। अंत में भगवान राधा को मिले। राधिका उस विशाल ऐश्वर्य को देखकर रुतवाक हो गईं। सूर देखी वा प्रभुता उनकी कहीं नहीं आवे बात। श्री कृष्ण ने समझा, रुक्मिणी ने भी समझा, वे उन्हें अपने घर लिवा गईं और बहन की तरह बगल में बैठ गईं। तब जाकर सूरदास के प्रभु तहां पधारे जहां दो ठकुरानी। और फिर राधा माधव भेंट भई, राधा माधव राधा कीट भृंग गति है जू गई। माधव राधा रंग राते, राधा माधव रंग गई। माधव राधा प्रीति निरंतर रसना कहीं न गई। परंतु बरसाने को उस मुखर बाला के मुंह से एक बात नहीं निकली। आनंद का यह गंभीर समुद्र किंचित मात्र चंचल नहीं हुआ। भगवान के चले जाने पर केवल पछता के रह गई। करत कछुना ही आज बनी, हरि आए हो रह ठगी सी जैसे चित्त वनी। आसन हर से हृदय नहीं दीनो, कमल कुटी अपनी। नव छावर उर अरध न अंचल जलाधारा जू बनी। कंच कुते कुछ कलश प्रकट है, टूटी न तरकी तरक तनी। अब उपजी अति लाज मन ही मन समुझत निज करनी। सूरदास की यह वीर विधुरा राधिका है। सूर सागर की यही विरह विधुरा राधिका है। इस राधिका के आत्मसमर्पण में एक ऐसा गंभीर है जो अन्यत्र दुर्लभ है। भगवान को अपना सर्वस्व दे देंगी, बशर्ते भगवान चाहें। श्री कृष्ण को पाना उनके लक्ष्य नहीं है, श्री कृष्ण का तृप्त होना ही उनका लक्ष्य है। हृदय धन को क्षण भर के लिए भी देख लेने की व्याकुलता से उनका हृदय टुक टुक हो जाता है। तथापि वे यह नहीं कहती कि श्री कृष्ण उनके साथ ही वही पुरानी केली आरंभ करें। राधिका का शरीर मन प्राण केवल एक ही उपादान से गठित है, उनकी तृप्ति। रह रहकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या महाकाव्य के भीतर से इससे अधिक सुंदर प्रेम मोती की रचना हो सकती थी, और क्या नाना भांति के पहाड़ों नदियों दुखों सुखों कर्तव्य अकर्तव्य के बयाबानों के भीतर घसीटने से राधिका का राधिकात्व ही नहीं नष्ट हो जाता। क्यों लोग व्यर्थ ही अफसोस किया करते हैं कि सूरदास ने महाकाव्य लिखकर इत्यादि।